योगः कर्म सुकौशलम्। कर्म की कुशलता ही ध्यान है, योग है, ऐसा लिखा हुआ है। वो कर्म की कुशलता क्या है ये जरा समझ लें। जैसे भैया किसी की आंख ना हो तो क्या उसको देख करके हम अपनी आंख फोड़ लेते क्या? किसी के हाथ ना हो तो क्या अपना हाथ तोड़ लेते? किसी के पैर ना हो तो अपना पैर तोड़ लेते हैं? ऐसा तो कोई नहीं करता। तो फिर दूसरे को गुस्सा आता तो हम क्यों गुस्सा करते? अब आ गया समझ में? बड़ा कठिन है। इतना ही है, घात प्रतिघात से बचने का उपाय यही है कि मैं जरा सा तो विचार करूं कि जब मैं दूसरे की आंख फूटी देखकर अपनी नहीं फोड़ता हूं तो दूसरे को गुस्सा करते देख करके गुस्सा क्यों करता हूं? दूसरे को गाली देते देख करके मैं भी क्यों गाली देने लगता हूं? इतनी छोटी सी चीज, इस अशुभ की प्रवृत्ति से बचने के लिए ऐसा विचार अनिवार्य है कि जैसे मैं दूसरे को कुएं में गिरते देखकर स्वयं नहीं गिरता हूं मैं तो बच जाता हूं, ऐसे ही इस संसार में सभी जीव। वरना लोगों को ये लगता है कि अरे कुछ नहीं रखा है इन बातों में, इसलिए कह रहा हूं ये चीज, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। दुनिया तो कर रही है, कौन अपन ही अकेले कर रहे, सब तो कर रहे, कौन ही झूठ बोल रहा हूं? कह महाराज जी की बातें कर रहे, सो कभी भी नहीं बोला झूठ। हां ऐसा विचार आएगा मन में, कौन नहीं करता है, सब तो करते हैं। ये जो सब तो करते हैं इसकी तरफ देखना है तो फिर अपने हाथ से अपना पतन करना है। और सबकी तरफ ना देख करके और अपनी तरफ देखने की प्रक्रिया की, मैंने दिन भर में क्या कमाया? मैंने मनुष्य होने के लिए पहले कुछ कमाया होगा तो आज मनुष्य हूं, आगे की मेरी तैयारी क्या है? या तो पशुता की तरफ जाऊं, या कि नरक में जाऊं, या कि देवत्व की तरफ ऊंचा उठूं? ये अगर हमारे मन में विचार आ जावे तो फिर हम आसानी से परोपकार या कि शुभ कार्यों में अपने मन को लगा सकते हैं। दूसरी चीज, क्या होता है परोपकार करने से और शुभ कार्य करने से? एक बार तो गलती कर ली और फिर उसके बाद में कुछ प्रायश्चित इत्यादि करने से होगा क्या? बहुत कुछ होता है। सांसारिक कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों का दुरुपयोग करके आगामी जीवन के लिए और पाप कार्यों को कमाता है, और परमार्थ के कार्यों में लगा हुआ, परोपकारी के कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों को जो शुभ हैं उनको बढ़ा लेता है और अशुभ कर्मों को घटा लेता है। दोनों ही कर रहे हैं कार्य, एक सांसारिक कार्य में लगा, कार्य तो किसी का नहीं रुका है। आप चाहे सांसारिक कार्य करें या कि पारमार्थिक कार्य करें, सांसारिक कार्य करने वाले को लगता जरूर है अपन को कि कितना ऐशो आराम है। सो ठीक है, आगे के लिए कर्म की स्थिति इतनी प्रबल बंधेगी और इतने समय तक के लिए बंधेगी कि अभी दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी तो जो व्यक्ति बेईमानी कर रहा है फलता फूलता नजर आता है, इसके मायने ये नहीं है कि ये बेईमानी का फल है, ये किसी पुरानी ईमानदारी का फल है। और होता क्या है, जब हम वर्तमान में बेईमानी करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर अशुभ कर्मों की ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी दोनों बढ़ जाती हैं, और जितनी ड्यूरेशन होगी उतने समय के बाद वो अपना फल देना शुरू करेगा। इसलिए अभी बांधे गए अशुभ कर्म तुरंत तुरंत दिखाई नहीं पड़ते, बहुत देर के बाद आएंगे। और इतने ही नहीं, दूसरा काम ये होता है कि भीतर के जो शुभ कर्म हैं वे समय से पहले उदीरित होकर के उदय में आते हैं, सो भैया फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं, वो कर रहे बेईमानी। और एक आदमी जो कि बिल्कुल ईमानदारी से जीवन जी रहा है, उसके शुभ कर्मों को बहुत डोमिनेट वो बांध रहा है, वो देर से उदय में आएंगे, अभी शुभ उदय में नहीं आ रहा। लेकिन जो पड़े हुए अशुभ हैं उनकी उदीर्णा होकर समय से पहले आकर के खिर रहे हैं, सो तकलीफ में दिखाई पड़ रहा है ईमानदार। ईमानदार आदमी जब भी तकलीफ में दिखाई पड़े तो समझना ये तो अब इसने तो अपना हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया। और बेईमान आदमी फलता फूलता दिखाई पड़े तो समझ लेना कि संसार बढ़ रहा है, भगवान रुष्ट है और पर प्रायश्चित दे रहा है, भोग विलास की सामग्री फैला करके इसको संसार में भटका रहा है और इसकी भोग विलास की सामग्री छीन ली, अब इसका संसार अल्प रह गया लगता यही है। ये प्रक्रिया है। जब भी हम इस बात का विचार करें शुभ और अशुभ का और वर्तमान को देख करके उससे मिलान करें तो ध्यान रखना शुभ का फल शुभ ही है, अशुभ का फल कभी शुभ नहीं हो सकता और कभी शुभ का फल अशुभ भी नहीं हो सकता। ये चीज हमारे मन में हमेशा ध्यान में रहे और हम शुभ की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं।